تین صورتیں آ رہی ہیں، ان کو اگر میں ایک عنوان دوں تو وہ ہے سنتھیسس آف ایمان یا گائیڈنس کا پروسیجر یا پروٹوکول آف گائیڈنس. اللہ تعالیٰ گائیڈنس کسے دیتا ہے؟ یعنی آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا کہ من یہدی اللہ فلا مضل له، جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے فلا ہادی له، اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ وہ جو ہدایت کی طرف جا رہا ہو اس کو گمراہی میں ڈال کے جنت میں ڈال دے. نہیں، انسان خود اپنی آزاد مرضی سے اما شاکرم و اما کفورا وہ آپٹ کرتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. سب کو اگر ہاں سورج کی طرف لگایا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے. والنہار دن کی قسم اذا جلاها، جب وہ سورج کو نمایاں کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کی قسم. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا ہے. ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم جو سواها اللہ تعالیٰ نے اس کو تسویہ کیا، اس کو سیدھا پدرا کیا. اب وہ سیدھا پدرا کیا ہے؟ یعنی چار لیولز ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. ایک لیول ہے جمادات کا لیول، فزیکل آبجیکٹس. یہ دیکھیں، فزیکل آبجیکٹس کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے نیوٹن نے، اور نیوٹن نے ان کی موومنٹس کو کیسے اسٹڈی کیا ہے. فرسٹ لا آف موشن کیا ہے؟ این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ، اینڈ این آبجیکٹ ان موشن ول ریمین ان موشن انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن اٹ. یہ کب یہاں پڑھا ہے؟ یہی پڑھا رہے گا. اس پر میں اس کو ٹلٹ کر دوں تو گریویٹیشنل فورس عمل کرے گی، میں اپنے ہاتھ سے کروں تو میری طاقت سے وہ یہاں سے یہاں آئے گا، یہ آپ سے آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل آبجیکٹس ہیں. پھر دوسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ نباتات ہیں. نباتات میں اور فزیکل آبجیکٹس میں کیا فرق ہے؟ ایک بیج فزیکل آبجیکٹ ہے، جب تک وہ بیج ہے آپ اس کو پھینکیں گے تو اپنی جگہ سے ہلے گا، لیکن اسی کو آپ زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ گرو کرتا ہے. اب گروتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک گروتھ کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جس طاقت کی بنیاد پر اس کا بیج پھٹتا ہے. موومنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایکسٹرنل فورس کوئی نہیں، اس کے اندر جو گروتھ کی طاقت ہے اس سے بیج پھٹتا ہے، پھر اس کی کومپل نکلتی ہے، اس کا تنا اوپر کو بڑھتا ہے پھیلتا ہے، اور جڑ نیچے جا کے پھیلتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ گروتھ شروع ہو گیا. تیسری مخلوق جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ وہ حیوانات ہیں، یعنی یہ بھی لیونگ اور یہ بھی لیونگ، لیکن ان میں ایک پودا اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا. نارملی ایک پودا اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا سوائے واٹر پلانٹس کے، لیکن حیوانات جو ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں آن دیئر اون، ایکسٹرنل فورس سے نہیں، اپنی قوت سے وہ موو کرتے ہیں. آگے بھی جاتے ہیں، پیچھے بھی جاتے ہیں، دائیں بھی جاتے ہیں، بائیں بھی جاتے ہیں، اوپر بھی اٹھتے ہیں اور نیچے بھی ڈائیو کرتے ہیں. مچھر جو ہے وہ بالکل سیدھا بھی اٹھ کے دکھا دیتا ہے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ موومنٹس ہیں بائی دیئر انٹرنل فورس. لیکن یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ یعنی حیوانات کو بیسٹ اسٹڈی کیا ہے ڈارون نے. وہ تو اس کی مت ماری گئی کہ اس نے روح کا انکار کیا ہے، انسان کو صرف حیوان بنا دیا، ورنہ اس کی اسٹڈی جو ہے وہ بہترین ہے. کہ جانوروں کی موومنٹ کا اس نے جو خلاصہ نکالا وہ کیا تھا؟ کہ اینیمل اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سب کے سب جانور اپنی ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور ان کی اسٹرگل کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹو پریزرو دیم سیلفز، پریزرویشن آف دا سیلف، اور نمبر دو پریزرویشن آف دا اسپیشیز. اس میں وہ اسٹرگل کرتے ہیں. جو ان کی پریزرویشن آف سیلف ہے اس میں کیا ہے؟ वो खाते हैं, पीते हैं, रिटेलिएट करते हैं, और जो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज है उसके लिए वो सेक्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहां मुशाहिदा क्या हुआ, ये डार्विन ने नहीं फर्क किया, मैं आपको नोट करवा रहा हूं कि जानवर को जब भूख लग जाए और उसकी पसंद का खाना उसकी दस्तरस में हो तो जानवर के पास इंटरनली कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को खाने से रोक सके। ये क्या है, ये उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, और फिर उसको वो रोक नहीं सकता अपने आप को, ठीक है ना। जिन लोगों ने भैंस पाली है उनका तजुर्बा है कि जब खुरली में लाकर भूसे के ऊपर पूड़ी के ऊपर वो गुदावे की बाल्टी डेली जाती है तो वो बड़ा लजीज खाना है उसके लिए। तो साल हाक साल का तजर्बा भी एक भैंस को ये नहीं सिखा सकता कि उसने ये रूखा नहीं खाना, लिहाजा उसका मालिक जो है वो गुतावा करते हुए साथ साथ थप्पड़ भी मारता रहता है। जिन लोगों ने पाली है नौजवान बेचारे क्या समझेंगे क्या हो रहा है, ये तो जिसने तजर्बा किया है वही जानता है। तो साल हाक साल का तजर्बा भी उसको ये नहीं सिखा सकता। प्यास लगी है उसको और पानी उसके मुंह तक पहुंचे तो यही पिए, उसके अंदर सेक्स जागे और उसका मेट भी विद इन इट्स रीच हो वो सेक्स करे ही करे। हाँ आप उसको एक्सटर्नली रोक दें, जैसे आप भैंस को रोक रहे हैं, इसी तरह गली में कुत्ते जो हैं वो सेक्स करने लगे तो बच्चे जो हैं वो पत्थर मार के और सोटियां मार के उनको ना मिलने दें तो बात दूसरी है। एक्सटर्नल फोर्स से रोका जा सकता है लेकिन इंटरनली उनके पास कोई फोर्स नहीं है कि अपने आप को रोक सके। चौथी मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की है वो हजरत इंसान है। इंसान पूरा हैवान है, जैसे मैंने कहा ना कि जानवर पौधों की तरह लिविंग है लेकिन मोर डेवलप्ड है। अब जानवर के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया, यानी इस बहस में ना जाएं आप कि अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, लेकिन हमारी जो इस वक्त ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि ये तार लेवल्स ऑफ क्रिएशन है, लेकिन जो इंसान का लेवल है वो क्या है। इंसान के लेवल पर अल्लाह ताला ने एक तो वो सारी चीजें ये जो हैवानी ख्वाहिशात थी पूरी पूरी रखी हैं लाइक एनिमल्स, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अपने उन इमोशंस पर कंट्रोल दिया है। रमजान में ये 27 दिन हमने क्या तजर्बा किया है, क्या भूख नहीं लगती थी, 16 घंटे का रोजा था, क्या प्यास नहीं लगती थी, लगी। लेकिन हम में से कितने बदनसीब हैं जिन्होंने खाया और पिया। हमारे पास इंटरनली वो एबिलिटी वो कंट्रोल सिस्टम है ना, इसी का नाम अकल है। कुरान मजीद में जो अकल है वो यही है कि अकल कहते हैं बांधने की चीज को। एकाल वो रस्सी होती थी जिससे बद्दू अपने ऊंट का घुटना बांधता था और जब वो सवार होता था पगड़ी के ऊपर उसको लपेट लेता था रस्सी को। आज बद्दू जो है वो लैंड क्रूजर और मर्सिडीज पर सवार होता है लेकिन आज भी अपने रुमाल के ऊपर वो खूबसूरत एकाल रखता है बांधने की चीज। तो अकल क्या है, ये बांधने की चीज है। बेखतर कूद पड़ा आतिश निमरूद में इश्क, अकल है मैं बे तमाशा है लबे बाम। तो अकल जो है वो इंसान के जज्बात को बांधने की फैकल्टी है और इसी में फर्क है औरतों को जो अल्लाह ताला ने नाकसुल अकल अल्लाह के रसूल ने कहा है, यही फर्क है कि उनको यानी अल्लाह ताला ने ये दोनों फैकल्टीज मर्दों को भी दी हैं औरतों को भी दी हैं लेकिन इनकी रेशियो ये बैलेंस में फर्क है। औरतों का बैलेंस जो है वो जज्बात की तरफ झुका हुआ है और मर्दों का बैलेंस जो है वो कंट्रोल की तरफ झुका हुआ है। मर्द को अपने जज्बात के एक्सप्रेशन पर कंट्रोल है। मर्द के जज्बात में सबसे पोटेंट जो जज्बा है वो सेक्स है, याद रखिएगा। कुरान मजीद की उस पर नस है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने कहा कि मर्दों के लिए पुरकशिश बनाई गई उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बतें जो औरतों बेटों माल दौलत के ढेर और उमदा नस्ल के घोड़ों यानी सवारी और खेती और मवेशियों में पाई, अल्लाह ताला ने रखी है उसकी कशिश। तो सबसे पहले औरत का जिक्र किया है और हमारा तजर्बा भी यही है। मैं भी आपको जो कह रहा था जिसको शक हो वो टेस्ट कर ले अपना। तो हमारा सबसे बड़ा मर्दों का वीक पॉइंट जो है वो है लेकिन औरत के जज्बात में सबसे ऊंचा जो उसका इंपॉर्टेंट जज्बा है वो मामता है मां की। क्यामत के दिन मर्द अकल से महरूम होगा, बता नासा सुकारा, तुम मर्दों को देखोगे नशे की हालत में। नशे की हालत में क्या होता है कि हायर सेंसर सेंटर सप्रेस हो जाते हैं और लोअर सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं और इंसान की जज्बाती कैफियत होती है। और औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी, ये क्या है, ये ममता के लिए इस्तेआरा है कुरान मजीद का। वरना नॉर्मली यानी औरत और मर्द जहां इकट्ठे काम करते हैं और दोनों अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ऊन करते हैं, मर्द घर से निकल जाता है तो उसको बीवी बच्चे भूल जाते हैं, औरत अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी देकर जाएगी बेबी सीटर को कि इतने बजे उसको शावर देना है, इतने बजे दूध पिलाना है, इतने बजे उसका नैपी चेंज करना है। उसको एक मिनट भी मिलेगा फारिग तो कॉल करके पूछ लेगी कि दूध पिला दिया। क्यामत के दिन वो अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी। अच्छा, अब मर्द का सबसे पोटेंट एक्सप्रेशन जो जज्बा है वो क्या है, वो औरत है। लेकिन मर्द को उसके एक्सप्रेशन पर कंट्रोल है। वो औरत से ये नहीं कहता कि नंगी हो जा फटाफट, मैं तुमसे सेक्स करना है। वो उसको यानी चक्कर दे के आता है, यानी अपने उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके रखता है। उसे कहता है कि ये मौलवियों ने तुम्हें घर में बिठा दिया है, दीनदार लोगों ने, आ जाओ तुम भी मैदान में, शाना बशाना आ जाओ, साके आग काम करो ताकि मेरे दफ्तर में तुम्हारी रौनक रहे। ये क्या है, अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल। मर्द जो है वो कंट्रोल रखता है, वह बच्चे से नाराज होगा तो दिन भर नहीं बोलेगा उससे, हफ्ता नहीं बोलेगा, महीना नहीं बोलेगा, साल नहीं बोलेगा। आपको ऐसी भी चीजें रिकॉर्ड में मिल जाएंगी कि किसी बेटे ने कोई नाजेबा हरकत की, बाप नाराज हुआ और उसने उम्र भर बेटे को नहीं बुलाया, लेकिन मां शी कांट डू इट। वो डांटे की बाद में खुद पहले रो पड़ेगी और गले भी लगा लेगी साथ उसको। अल्लाह ताला ने चूंकि उसको असाइनमेंट दी है बच्चे को पालने की, बच्चे शफकत से पलते हैं, हमें बच्चे पालने पड़ जाए तो मार मार के हुलिया बड़गाड़ देंगे उनका। तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो एबिलिटी अता की है, अक्ल, ये है असल में इंसान का इम्तियाज। और ये किसमें है, ये वो जो दरमियान में इंसान है, इंसान है, ये उसकी फैकल्टी है, ये उसकी क्वालिटी है, अक्ल, कंट्रोल करना। जज्बात हैं लेकिन वो खुद फैसला करता है किधर जाना है, किसको रिस्पॉन्ड करता है, करना है नफ्से हमारा को रिस्पॉन्ड करना है या रूह को रिस्पॉन्ड करना है, फैसला इसके हाथ में है। कल हमने पढ़ा कि इन्ना हदैना हो सबीला, हमने उसको रास्ता दिखा दिया है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, वो चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, चाहे तो ना शुक्रा बन जाए। कुरान मजीद में कई मकामात पर इंसान की तखलीक को तीन स्टेप में नकल किया गया है। वही قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون, याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं गारे से, सने हुए गारे से, चिपचिपाते हुए खनखनाने वाले गारे से मैं एक बशर बनाने वाला हूं, ये होगी तखलीक। और तखलीक जो है इसका इतलाक होता है थ्रू ए प्रोसेस किसी चीज को बनाने पे। निशा साहब ने जो तकसीम की है, खल्क क्या है, जिसमें एक टाइम इन्वॉल्व होता है और एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, उसके मुकाबले में अमर क्या है कि जो अल्लाह ताला का इंस्टेंटेनियस ऑर्डर होता है, हो जा एंड देयर इट इज। तो पहला हिस्सा वो तखलीक है कि अल्लाह ताला ने यानी एक प्रोसेस में से गुजार को इंसान को पैदा किया, यानी जिसका बाइबल में क्या उसका बयान है कि अल्लाह ताला ने सात बड़े आजमों से मिट्टी इकट्ठी की और फिर उसको पानी के साथ गूंदा गारा बनाया, फिर उसको इंसान की एक शेप और उस पर फूक मार दी। ये है बाइबल की डिस्क्रिप्शन। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी डिस्क्रिप्शन को, यानी मरफू हदीस में नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो उन्होंने खुद इंसानी तखलीक को बयान किया है। अच्छा, अब कुरान मजीद के अल्फाज को देखिए। पहला स्टेप हो गया कि मैं बनाने वाला हूं, तखलीक करने वाला हूं, इट शुड टेक टाइम, इट शुड हैव ए प्रोसेस। नंबर टू, फाइजा सब वही तो। मुसन्नफ अब्दुल रहमान की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान का पुतला बनाया, यानी तखलीक किया इंसान को, और फिर उसे छोड़ दिया 40 दिन के लिए और शैतान उसके अंदर घूमता फिरता रहा। इन 40 दिनों में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इंसान का वो सॉफ्टवेयर बनाया। जो लोग कंप्यूटर से मुतालिक हैं उन्हें पता है कि सॉफ्टवेयर जो है फूक मार के नहीं बनता, इट टेक्स टाइम टू। तो अल्लाह ताला ने इंसान का वो सॉफ्टवेयर बनाया कि हैवान तो वो था ही था पूरा, भूख भी लगनी थी, प्यास भी लगनी थी और गुस्सा भी आना था। तो अल्लाह ताला ने उसका कल्ब, जो रूहानी कल्ब है उसका सॉफ्टवेयर वो बनाया। अच्छा, जब वो भी बन गया, फैजा सब वही तू, तीसरा स्टेप क्या है, वन अफख्तु फीही मिन रूही, फिर मैं उसमें रूह में से फूंक दूं, तो उसमें अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, अब ये पूरा का पूरा इंसान बन गया। फकौ लहु साजिदीन, तो उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। तो तस्विया क्या है? नोक पलक सवारना कहीं तर्जमा होगा। सवा कहते हैं बराबर को। इसका मैं अगर करीब तरीन लफ्ज के तर्जमा करूं तो वो सीधा पता करना है। सीधा पता क्या होता है? आप जब किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी शक्ल भी देखने को जी नहीं चाहते, कहीं से उभरी होती है, कहीं से डिप्रेस्ड होती है। तो फिनिशिंग क्या होती है? उसको सीधा पतरा करना। क्या मतलब? कि जहां से उभरी हुई है उसको ट्रिम कर दो और जहां गड़ा पड़ा हुआ है उसको फिल कर दो। अब वही जो पिलर है वो खूबसूरत लगने लगता है। तो है वही हैवान, लेकिन इसमें कुछ सॉफ्ट चेंज आई है जिसकी बुनियाद पर अब ये ब्यूटीफुल हो गया, तस्विया हो गया, अब ये इंडिपेंडेंट हो गया। अल्लामा इकबाल ने उसको कहा ना कि खाकियो नूरी निहात, ये नूर जो है वो रूह है और खाक जो है ये इंसान का हैवानी वजूद है। खाकियो नूरी निहात बंदा ये मौला सिफात, ओहो ये खुदाई सिफात का हामिल है। कैसे? हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज, ये जो उसका दिल है इंसान इंसान, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है। खाकियो नूरी निहात बंदा ये मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। तो ये है इंसान। मुझे इकबाल ने कहा ना कि अपनी खुद ही पहचान ओ गाफिल अफगान, यानी वो लोग बड़े बदनसीब हैं जिन्होंने इंसान को जस्ट एक हैवान समझा है, और उनका जो पॉइंटियर है वो डार्विन है। कल हमने पढ़ा था परसों उसके बारे में कि वला तकूनू कल्लजीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, और रामा इकबाल ने कहा कि मेरे फलसफा खुदी की बुनियाद ये है, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। इन टर्म्स अल्लाह ताला ने खुद उनको अपना आप बुला दिया, उलाइकहुमुल फासिकून, वो नाफरमान है। तो इंसान का वजूद एक पूरा मुरक्कब वजूद है, इसमें एक फरिश्ता भी है एक रूह भी है। एक जिमनी सी बात आपको और बता दूं, आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा फिरका वारियत का। वो क्या है कि कुरान मजीद ने बार बार तस्वीर खींची है कि लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हूना बिहा, जो काफिर हैं जो फासिक व फाजिर लोग हैं उनकी तस्वीर खींची है कि उनके उनकी आंखें हैं उनसे देखते नहीं। यानी सूरह आराफ में अल्फाज हैं कि वला का जरा नाली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कि हमने बहुत से इंसानों को तो यूं समझो कि हमने पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल हैं लेकिन उनसे फहम हासिल नहीं करते। वलहुम आयुनुन, उनकी आंखें हैं उनसे देखते नहीं। ला युबसिरूना बिहा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके कान हैं उनसे सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, वो ऐसे हैं जैसे चौपाए हों। बलहुम अदल, बल्कि इवन वर्स देन दैट, उनसे भी ज्यादा भटके हुए। अच्छा, अब इसका कन्वर्स देखिए, कुरान मजीद ने एक को बयान किया दूसरे को बयान नहीं किया। इसका कन्वर्स देखिए कि अगर वो शख्स जो अपने ऊपर अपनी हैवानियत को गालिब कर ले, कुरान मजीद उसे कहता है कि वो निरा हैवान है, तो जो अपनी नूरानियत को अपने ऊपर गालिब करे फिर वो क्या हुआ? वो नूर हो गया कि नहीं? एक फितना फरियत खत्म हो गई, नूर बशर का मसला हल हो गया। तो अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मानी में नूर कहे तो कम से कम मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, जो कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद यानी अल्लाह ताला के नूर से बना है वो शिर्क है, लेकिन इस मानी में कहे जैसे कुरान मजीद वो लोग के जो इसको हैवानियत को अपने ऊपर गालिब करते हैं उनको निरा हैवान कहता है, निरे चौपाए कहता है, तो जो अपनी नूरानियत को अपने ऊपर गालिब करें तो उन पर निरे नूर का इतलाक क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कुरान मजीद ने यानी एक को बयान किया है दूसरे को बयान नहीं किया, उसी खतरे की वजह से कि उससे शिर्क का अंदेशा ना हो। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर हैवानियत को अपने ऊपर गालिब करने वाले हैवान हैं तो नूरानियत को अपने ऊपर गालिब करने वाले नूर भी कहला सकते हैं। वल्लाह वाला। तो फरमाया वनफ्सिम वमा सव्वाहा, और इंसान के नफ्स की कसम और जो उसको संवारा, जो सिद्धा पदरा किया। फअलहमहा फुजूरहा वतक्वा का, ये देखिए यह ना नेकी और बदी की पहचान। फअलहमहा, फिर उसको इल्हाम किया। इल्हाम क्या होता है? यानी ऐसा मैसेज कि जो जो तभी चैनल्स हैं उनसे हटकर दिया जाए, उसको इल्हाम कहते हैं। यानी इन कानों से आप कोई आवाज ना सुने, बहरास दिल के कानों से सुने, आपके दिल में फील हो कोई मैसेज, इंट्यूशन जिसे जदीद साइकोलॉजी में कहते हैं, वो सारा क्या है, वो इल्हाम है। तो फअल्हमहा, तो उसको इल्हाम किया, फुजूरहा व तक्वाहा। अब जिन लोगों ने अरबी पढ़ी है उनके सामने सवाल आएगा ये हा कौन है, ये नफ्स है ना मुअन्नस, तो ये सीगा उसकी तरफ जा रहा है। और हमने उसको पहले क्या है, व नफ्सिम व मा सवाहा, कसम है नफ्स की जो उसको संवारा। अब फिर उसको इल्हाम किया, वट विल कंजर्व इट एंड वट विल स्पॉइल इट। ये है नेकी और बदी का असल तसव्वुर। ये जो तुम्हारी, तुम्हारा तस्विया हुआ है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है खुद एक्ट करने की, खुद फैसला करने की, और बता दिया कि तुम्हारी ये एबिलिटी कंजर्व कैसे होगी, किन किन कामों से, झूठ बोलने से स्पॉइल हो जाएगी, चीटिंग करने से स्पॉइल हो जाएगी, बद अखलाकी का मुजाहरा करने से स्पॉइल हो जाएगी। इफ यू वॉन्ट टू रिमेन अ ह्यूमन बींग, तो फिर तुम्हें उस कोड पर अमल करना होगा जो तुम्हें यह बता रहा है। तो फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा। अब उसी को प्योरिफिकेशन कह लें। प्योरिफिकेशन वो तस्वीर जो हमने सूरह नूर में पढ़ी थी वो है। वो क्या है, असल जो ये तो डायग्रामेटिक था ना, असल क्या है, ये इंसान का सीना है, ये जिस्म का रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अंदर वो कल्ब है वो जिसको शीशे से ताबीर किया है उस वक्त। अब ये जो हैवानियत है ये मिट्टी से बनी है, इसकी ख्वाहिशात मिट्टी के लेप चढ़ाती हैं इंसान के दिल पर, और जब शीशे के ऊपर मिट्टी की लेप आ जाती है तो शीशे की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसमें से रेज पास नहीं कर सकती रोशनी की। अंदर क्या है, वो चिराग रोशन किया है इंसान ने रूह का, मिशकात और मिसबा और जुजार, ये तीन चीजें थी ना उस सूरत नूर के पांचवें रकू में, तो अंदर वो दिया है। अब जो शख्स अपने दिल को पाक और साफ रखेगा, यानी हैवानियत के से बचाकर रखेगा उसको, हैवानियत उस पर मुसल्लत नहीं हो सकेगी, अवेल करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, रिप्रोड्यूस भी करेगा, रिटेलिएट भी करेगा, लेकिन हैवानियत उस पर जमेगी नहीं जाके, तो उसका दिल साफ होगा, तो उसके जो अंदर नूर है वो पूरे जिस्म में सराइश करेगा, उसकी आंख भी उसकी रोशनी में देखेगी, उसके कान भी उसकी रोशनी में सुनेंगे, उसका दिल भी उसकी रोशनी में चलेगा, उसके पांव भी उसकी रोशनी में चलेंगे, सब कुछ जो है वो उसका पूरा वजूद मुनव्वर हो जाएगा। और जो अच्छा, अब जब खुर्शीद रिसालत तुलू होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आफ्ताब रिसालत तुलू हो गया, तो रोशनी का फंक्शन क्या है, रोशनी वो तवानाई है जिसकी मौजूदगी में हम देख सकते हैं। और डॉक्टर मुमताज हसन साहब ने जब हमें क्लिनिकल मेथड पढ़ा रहे थे तो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट बताया, तो उन्होंने अपने उस्ताद को कोट किया, पता नहीं कौन से टीचर को कोट किया, कि एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट शुड बी डन इन ए गुड लाइट विद ए गुड आई साइट एंड ए गुड ब्रेन बिहाइंड। ये चार चीजें जरूरी हैं, चौथी लगा लिए, तीन वो गुड आई साइट, गुड लाइट, गुड आई साइट एंड गुड ब्रेन बिहाइंड, तो चौथा लगा लें एंड ए क्लीन हार्ट। ये होगा तो खुर्शीद रिसालत उसकी डिवाइन रोशनी है ना, और रूह की भी डिवाइन रोशनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी एक है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी तो रेजोनेंस पैदा होगा, तो वो हो जाएगा नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु नूरी मन यशा। तो ये वो पूरा प्रोसेस है हिदायत का। कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब तो वो हुआ जिसने अपने उस नफ्स को पाक और साफ रखा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और नाकाम हुआ जिसने उसको मिट्टी में मिला दिया, वो था ना नीचे मिट्टी का वजूद और उसके ख्वाहिशात, जो उन ख्वाहिशात को ही पूरा करता रहा, गोया उसने अपने कल्ब पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया, जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, अंदर की रोशनी बाहर नहीं और बाहर की रोशनी अंदर नहीं जा सकती। कज़्ज़बा समूद बितक़्वा, कौमे समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुटलाया, इज़्म बाथ अशकाहा, जब बिफर कर उठा उनका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बदबख्त शख्स, फ़काल लहुम रसूलुल्लाह नाक़त अल्लाह व सुक़्याहा, जब उनसे अल्लाह के पैगंबर ने कहा खबरदार ये अल्लाह की ऊँटनी है, इससे, इसको हाथ लगाने से डरो और इसकी बारी में दखल अंदाज़ी से बचो, फ़कद्दबुहु फ़ाक़रुहा, लेकिन उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को झुटलाया और उसकी अगली टांगें काट दी ऊंटनी की। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, आखिरकार तबाही और बर्बादी नाजिल कर दी उन पर उनके रब ने بِذَنْبِهِمْ उनके गुनाह की वजह से, فَسَوَّاهَا उनको पतरा कर दिया, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا और अल्लाह ताला उसके कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरता।